अभिमन्यु और अभिमान दोनों ने ही आशुतोष और काजल को समझाने की कोशिश की कि आशिका उनकी बेटी है। आशिका का सच साबित करने के लिए अभिमान ने जबरदस्ती तृप्ति के बालों का सैंपल ले लिया था, ताकि आशिका की सच्चाई को साबित कर सके कि वो तृप्ति की बेटी नहीं है। हालांकि जिस तरह से आशुतोष और काजल आशिका को अपनी बेटी मानने से इनकार कर रहे थे, उसके बाद अभिमन्यु को यही लगता था कि वे दोनों आशिका के पेरेंट्स होना डिजर्व नहीं करते हैं। आशिका की सच्चाई साबित होने से ज्यादा जरूरी उसका मिलना था, और इस वक्त अभिमान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आशिका को कैसे ढूंढेगा। वो दोनों इस बात को लेकर परेशान खड़े थे, तभी अचानक आशुतोष और काजल वहां वापस आए। काजल ने तृप्ति को बुरी तरह झकझोर दिया और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी। अभिमान और अभिमन्यु को ये देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि थोड़ी देर पहले पूरे सबूत देने के बाद भी वे दोनों इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आशिका उनकी बेटी है। बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? तुम कितनी घटिया औरत हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इतनी तकलीफ देने की? काजल रोते हुए उससे शिकायत कर रही थी। तृप्ति को कुछ समझ नहीं आया, वो अनजान बनते हुए बोली, मुझे क्या पता तुम्हारी बेटी आशी कहाँ है, वो घर पर होगी और मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। तुम सब लोग अचानक हर चीज का जिम्मेदार मुझे क्यों बना रहे हो? तृप्ति के इस तरह दिखावा करने पर आशुतोष को गुस्सा आ गया। वो उसके पास जाकर चिल्लाकर बोले, क्या तुम कुछ देर के लिए झूठ बोलना बंद नहीं कर सकती? हम आशी की नहीं बल्कि हमारी बेटी आशिका की बात कर रहे हैं, जिसे थोड़ी देर पहले तुमने आकाश राजवंश के साथ भेज दिया। क्या अभिमान सच कह रहा था? तुमने हमारी बेटी को उस आदमी को बेच दिया? तृप्ति आशुतोष की बातें सुनकर बुरी तरह सकपका गई थी। उसका चेहरा देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। तृप्ति ने थूक निगला और सिर हिलाते हुए बोली, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आशिका मेरी ही बेटी है और मैंने उसे किसी को नहीं बेचा, वो दोनों पहले से ही शादी। तृप्ति की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि काजल ने उसे कसकर तमाचा लगाया। इस बीच अभिमन्यु और अभिमान उनके पास पहुंच गए थे। इससे आप सच सुनने की उम्मीद मत कीजिए, लेकिन अचानक आपको हमारी बात पर कैसे यकीन हुआ? अभिमान ने उनके पास आते ही हैरानी भरे लहजे में पूछा। आशुतोष और काजल ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आशुतोष ने अपना हाथ उनके सामने किया। उनके हाथ में आशिका का मोबाइल रखा हुआ था। जब आशिका अभिमान से बात कर रही थी और अचानक उसे आकाश ने पीछे से आकर पकड़ लिया था, तब उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया था। कॉल ऑन होने की वजह से मोबाइल ऑटोमेटिक लॉक नहीं हुआ था। जब आशुतोष और काजल बाहर आए, तब उनकी नजर वहां पड़े मोबाइल पर गई। उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसे उठा लिया था। ये जानने के लिए कि वो मोबाइल किसका है, उन्होंने गैलरी खोली और वहां उन्होंने आशिका की कुछ तस्वीरें देखी। उन फोटोज में उसने लेंस नहीं लगा रखे थे और साथ ही कुछ पुरानी तस्वीरें भी थीं, जिन्हें देखकर वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि आशिका उनकी ही बेटी है। ये तो ऐश का मोबाइल है। अभिमान ने आशुतोष के हाथ से मोबाइल लेना चाहा, लेकिन उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया था। अभिमान आंखें बड़ी करके उनकी तरफ देखने लगा। आशुतोष ने सफाई देते हुए कहा, इसमें उसकी फोटोज है और तुम लोग सही कह रहे थे। इस औरत से नफरत करने के चक्कर में हमें सच अपने सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दिया। जब अचानक उस दिन आशिका मेरे सामने आ गई थी, तब इसने जानबूझकर हमारी नफरत का फायदा उठाया और आशिका को अपनी बेटी कहकर इंट्रोड्यूस किया। जहां आशुतोष उन्हें सब बताने में लगे हुए थे, वहीं काजल की आंखों में आंसू थे। तृप्ति भी अब समझ गई थी कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। सच्चाई आईने की तरह उनके सामने आ चुकी थी और अब वो बच नहीं सकती थी। अचानक तृप्ति के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। आशुतोष और काजल की आंखों में आंसू देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, चलो तुम लोगों को सच पता चल ही गया, लेकिन क्या फायदा? तुम दोनों कभी उस तक नहीं पहुंच पाओगे और अपनी नफरत में तुम लोगों ने उसके साथ जैसा बर्ताव किया, उसके बाद वो तुमसे नफरत करती होगी। मैं उस लड़की को अच्छे से जानती हूँ। जो कोई उसकी परवरिश और उस पर सवार उठाता है, वो उसे भूलती नहीं है। जैसे जैसे तृप्ति बोले जा रही थी, काजल की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अभिमन्यु ने पृथ्वी को तृप्ति को वहां से ले जाने का इशारा किया, क्योंकि वो जानबूझकर उनके जले पर नमक छिड़क रही थी। आशुतोष ने अभिमन्यु की तरफ देखा और भौहें चढ़ाकर पूछा, आपको कैसे पता चला कि आशिका हमारी बेटी हो सकती है? क्योंकि उसे खुद इस बात का डाउट था। उसने शादी में आपको और यज्ञ को देखा था और आप लोगों की आईज एक जैसी हैं, तब उसने मुझे बताया था। वो कभी डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहती थी और मुझे उसका ब्लड सैंपल लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। सब सामने आने के बाद भी आशिका यही चाहती थी कि आपको कुछ पता ना चले। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है मिस्टर सिंघानिया, लेकिन तृप्ति की बात काफी हद तक सही है। वो आप लोगों के पास नहीं आना चाहती है, अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा और उन्हें पूरी कहानी बता दी थी। उसकी नफरत जायज है, आशुतोष ने अफसोस भरे लहजे में कहा। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, मैंने न जाने उसे क्या क्या नहीं कहा। जब मैंने उसे तृप्ति के साथ देखा, तो मुझसे गुस्से में ये तक निकल गया था कि न जाने वो किसका गंदा खून है। आशुतोष ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बांध लिया था। उन्हें ये सब बताते हुए शर्मिंदगी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। गलती उसकी नहीं है, हमने उसके साथ बुरा बिहेव किया, काजल बोली। अचानक उसे अपनी आशिका के साथ हुई पहली मुलाकात याद आ गई थी, जब आशिका उसके साथ काफी रूखे तरीके से बर्ताव कर रही थी और उसने उसकी हेल्प करने के बावजूद उसे थैंक्स नहीं कहा था। तब काजल के मुंह से यही निकला था कि क्या उसके माँ बाप ने उसे बेसिक मैनर्स भी नहीं सिखाए हैं। उस वक्त आशिका ने यही जवाब दिया था कि उसके माँ बाप नहीं है। अब अफसोस जताने का कोई फायदा नहीं है, अभिमान ने उनकी तरफ देखकर कहा। आप सभी ही चाहते थे ना कि वो मेरी जिंदगी से दूर चली जाए, और इसलिए आप सब मिलकर साजिश कर रहे थे। याद है ना मिस्टर सिंघानिया, आपने मुझे कहा था कि एक दिन आएगा जब मैं आपसे आकर कहूंगा कि मुझे आशिका को छोड़ना है। अब किस्मत देखिए, वो आप ही की बेटी है और आप खुद नहीं चाहेंगे कि उसकी शादी टूटे। लेकिन मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था वो किसकी बेटी है और ना ही आज। आशिका के इस तरह जाने का दुख मुझे भी है और मैं उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन हाँ, इस बात को मैं मेक श्योर करूंगा कि वो कभी आपसे ना मिले। अभिमान ने एक नज़र अभिमन्यु की तरफ देखा, उसने सिर हिलाया। वो उसके इस फैसले में पूरी तरह उसके साथ था। हमें चलना चाहिए और देखते हैं कि हम आशिका को कैसे ढूंढ सकते हैं, अभिमन्यु ने अभिमान की तरफ देखकर कहा। वे दोनों वहां से जाने लगे तभी आशुतोष ने पीछे से प्लीडिंग वॉइस में कहा, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभिमान ने उनकी बात को बीच में काट कर कहा और फिर अभिमन्यु के साथ वहां से चला गया। उस जगह पर अब सिर्फ आशुतोष और काजल रह गए थे, पछतावे और दुख के साथ कि उन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ पहचाना ही नहीं बल्कि उसका बहुत दिल भी दुखाया था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करती, क्या वो हमें माफ नहीं करेगी? इतने सालों बाद मिली तो दूर हो गई और हमारी आंखों के सामने थी तो हम उसे पहचान नहीं पाए, क्या हमारी किस्मत इतनी बुरी है आशु? काजल ने आशुतोष के सीने से लगकर कहा। हमारी बेटी जिंदा है और मुझे पता है कि उसे कैसे मनाना है, बचपन में भी नाराज हो जाती थी ना, सिर्फ मैं ही उसे मना पाता था, आशुतोष ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। वे काजल को तसल्ली दे रहे थे।
लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही और साथ ही वो पहले से सच जानती थी, फिर भी उसने मिस्टर राजवन से कहा कि हमें इस बारे में पता ना चले। क्या वो हमसे नाराज है क्योंकि हमने उसे बचपन में खो दिया था? अभिमान ने बताया कि तृप्ति ने आशिका को बहुत दुख दिए थे। काजल ने सिर उठाकर आशुतोष की तरफ देखकर कहा। वे जितना आशिका के बारे में बात कर रहे थे और उसके बारे में सोच रहे थे, उन्हें उतना ही दुख और पछतावा घेर रहा था। न जाने कितनी देर तक वे दोनों ऐसे ही वहां पर बैठकर आंसू बहाते रहे, पर ना तो उन्हें कोई देखने वाला था और ना ही दिलासा देने वाला कि आशिका उनके पास वापस आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आशिका इस वक्त आकाश के साथ प्राइवेट जेट के अंदर थी। वो जानबूझकर पहले उसे दरवाजे से थोड़ी दूर लेकर खड़ा था ताकि वे सब अपनी आंखों से उन्हें जाते हुए देख सकें और उन्हें अपनी बेबसी का और ज्यादा एहसास हो। जैसे ही वे उनकी नज़रों से दूर पहुंचे, आशिका और आकाश अंदर की तरफ आ गए थे। वे दोनों आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अचानक आकाश जोर से हंसा और बोला, तुम्हारे इस तरह घूर कर देखने से कुछ नहीं होगा, पहले आराम से मेरी बात मान लेती तो सब कुछ कितना आसान रहने वाला था, लेकिन तुमने खुद अपनी मुश्किलें बढ़ाई हैं बेवकूफ लड़की। मैं अभिमान की वाइफ हूं और वो आपका बेटा है, आपको नहीं लगता कि हमारे बीच एक रिश्ता बन गया है और उसके बाद आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं? आशिका ने बिना किसी भाव के कहा। ना तो मैं उस लड़के से अपना रिश्ता मानता हूँ और ना ही अपनी पत्नी से, तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों की शादी हुई है या फिर तुमने अपनी जिद में जाकर उसके साथ किसी तरह के रिलेशन बनाए हैं। सच तो ये है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और ये तुम्हारी आंखों में देखकर कोई भी बता सकता है, आकाश बोला और वो आशिका के पास बढ़ने लगा। आशिका अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, वो एक इंच भी नहीं हिली। आकाश उसके पास आया और उसका मुंह दबाते हुए चेहरा ऊपर किया। बताओ, उससे प्यार करती हो क्या? आकाश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए पूछा। अगर मैं हाँ कहूंगी तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? आशिका ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल पूछ लिया था। बिल्कुल नहीं, फिर मुझे तुम्हें तड़पाने में और मजा आएगा और तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे सो कॉल्ड प्यार को भी तकलीफ दूंगा, आकाश ने काफी निर्दयता से जवाब दिया। आशिका ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली थीं। फिलहाल उसके पास आकाश की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वे जेट के अंदर थे, ना तो वो उस जगह से भाग सकती थी और ना ही किसी से मदद मांग सकती थी। आशिका ने गहरी सांस ली और वहां सीट पर बैठ गई थी। गुड गर्ल, आकाश उसके पास आकर बैठते हुए बोला, बिल्कुल इसी तरह मेरी सारी बातें माननी है। क्या पता टाइम के साथ मैं ये भूल जाऊं कि तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे एलए से इंडिया आने पर मजबूर कर दिया था। आकाश आशिका से बात करने में व्यस्त था, तभी जेट के अंदर कॉकपिट से पायलट की आवाज आने लगी। आकाश और आशिका दोनों ही जल्दी से उठकर खड़े हो गए थे। सर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमारे आसपास अचानक से कुछ हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और वे हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पायलट ने घबराई आवाज में कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी लोकेशन के बारे में किसी को नहीं पता और इतनी जल्दी कोई इसकी हेल्प करने के लिए कैसे आ सकता है? आकाश हैरानी भरे लहजे में बोला। आकाश ही नहीं, आशिका भी चौंक गई थी, क्योंकि इतने कम वक्त में सच में उसकी मदद के लिए आसमान में कोई नहीं आने वाला था। आशिका जल्दी से मुड़ी और उसने खिड़की से देखा तो वे लोग सच कह रहे थे। आकाश ने जल्दी से आशिका को खींचकर दूसरी तरफ किया। वो उसे वार्निंग फिंगर दिखाते हुए सख्त आवाज में बोला, इस बार तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की है या फिर तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ हुई है तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, आशिका ने जवाब दिया। आकाश ने सिर हिलाया और जल्दी से कॉकपिट से संपर्क करने के लिए रिसीवर को उठाया। वो बोला, जल्द से जल्द उन्हें भटकाने की और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि ये मेरा ही कोई दुश्मन है जो मुझे ट्रैक कर रहा था और मुझ पर हमला बोल दिया। हमारी पोजीशन अभी हमला करने की नहीं है, क्योंकि ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है और ना ही ज्यादा वेपन्स हमारे पास है। हमें बस सुरक्षित यहाँ से निकलना है। रॉजर दैट सर, पायलट ने जवाब दिया। आकाश भले ही सुरक्षित वहां से निकल जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अगले 5 मिनट के अंदर ही उन हेलीकॉप्टर्स ने उनके जेट पर हमला करना शुरू कर दिया था। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। तो क्या लगता है, आशिका को मदद मिलने वाली है या फिर वो एक नई मुसीबत में फंसने वाली है? जो भी हो, अकेले मुसीबत उस पर नहीं, आकाश पर भी आएगी। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।